नो, हो गया। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आज की मुरली में गीत है तकदीर जगाकर आई हूं। आए हैं किसके पास? बाबा के पास। तो आज बाबा कुछ ऐसे महावाक्य बोल रहे हैं जिसमें बाबा हमको याद दिलाते हैं कि हम बाबा के पास क्यों आए हैं, क्यों आए हैं। क्योंकि कभी कभी माया ऐसा रूप ले लेती है जो ये बात हमको भुला देती है कि हम क्यों आए हैं। और जब हम ये भूल जाते हैं क्यों आए हैं, तो हमारी जो गाड़ी का रास्ता है ना जिंदगी की, थोड़ा सा कहीं और चला जाता है, वो ट्रैक ही बदल जाता है। जो ट्रैक बदल जाता है तो जिस मंजिल पर हमको पहुंचना है अभी संगम युग पर, वो मंजिल दूर हो जाती है। और वो मंजिल क्या है हमारी संगम युग की, या संगम युग के जीवन का जो लक्ष्य है वो है अतींद्रिय सुख। तो अगर वो ट्रैक बदल जाता है तो अतींद्रिय सुख की अनुभूति या तो होती नहीं, और अगर होती है तो बहुत कभी कभी होती है, और या फिर कहीं बिल्कुल ही गलत कुछ होने लग जाता है। तो इसलिए जब हम बाबा की आज मुरली सुनेंगे तो उन पॉइंट्स को जरूर नोट करेंगे कि हम बाबा के पास क्यों आए हैं, इस अपने लक्ष्य को हम पक्का कर लेंगे। और दूसरी बहुत इंटरेस्टिंग बात बाबा सुनाते हैं कि लोग तो भक्ति में तमोप्रधान होने के कारण, देखो जब भगवान के मंदिर में, माना शिव बाबा के मंदिर में जाते हैं, समझते भी हैं ये भगवान है, और लेकिन चढ़ाते क्या हैं, चढ़ाते क्या हैं, अक के फूल। हाँ, गेंदे का भी फूल नहीं, अक के फूल चढ़ाते हैं। और दूध भी जो चढ़ाते हैं वो 5% दूध और 95% पानी। तो भगवान के ऊपर क्या चढ़ाना चाहिए वो भी उनको पता नहीं, लेकिन बाबा कहते हैं आप बच्चों को तो पता है ना क्या चढ़ाना चाहिए। अगर दूध चढ़ाना चाहिए तो कैसा वाला चढ़ाना चाहिए, है ना। अब क्या मतलब है बाबा के ऊपर हम तो कोई दूध चढ़ाने की तो बात नहीं, तो क्या मतलब है इसका कि कौन सा दूध चढ़ाना चाहिए। हम बाबा के ऊपर कुछ चढ़ाते हैं रोज, चढ़ाते हैं? क्या चढ़ाते हैं, क्या चढ़ाते हैं, तो ये भी सोचना है बाबा के ऊपर हमको क्या चढ़ाना चाहिए। फिजिकली भी जब आज भोग का दिन है, हम भोग की ट्रे में फल रखते हैं, भोग बनाते हैं, जल रखते हैं, तो वो ट्रे कैसी होनी चाहिए, है ना, बॉक्सेस कैसे होना चाहिए। वो चांदी के बॉक्सेस कभी कभी काले हो जाते हैं, है ना, तो हमको देखना होता है ना कि वो बॉक्स काला हो गया, अब उसको थोड़ा चमका दो, साफ कर दो, भगवान को भोग लगाने जा रहे हैं। फल कैसा है ना, उसके ऊपर कोई कोई दाग धब्बा तो नहीं लगा है, कहीं से वो इधर उधर से गला हुआ तो नहीं है, है ना, तो चेक तो करते हैं ना इस चीज को। अब ये तो हुआ स्थूल बात, बाबा के घर में हम चीजें लेके आते हैं तो ये जरूर सोचते हैं कि कैसी चीज भगवान के घर में लेके आ रहे हैं। परंतु सूक्ष्म बात, बाबा के ऊपर हमको क्या चढ़ाना है, क्या चढ़ाना है, कौन सी चीज चढ़ाने से बाबा बहुत खुश होंगे, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर हम बाबा को रोज अच्छी अच्छी अपने बारे में न्यूज दें कि बाबा आज मैंने ऐसा पुरुषार्थ किया और उसका रिजल्ट ये हुआ, अच्छी अच्छी न्यूज दें, तो मुझे लगता है ये बाबा के ऊपर चढ़ाने की बात है। आज मैंने ये सर्विस की और उस आत्मा को उस सेवा से ये अनुभव हुआ। और अगर हम बाबा आज मेरे से गलती हो गई, बाबा आज मैं अमृत वेले नहीं उठा, बाबा आज मेरे क्लास मिस हो गई, अपने बारे में ही कुछ कंप्लेंट करते रहे औरों के बारे में, तो ये तो कुछ अच्छी सी चीज नहीं हुई ना। तो बाबा कहते हैं आप बच्चों को तो समझ है ना, तो बाबा के ऊपर क्या चढ़ाना चाहिए। तो जब हम मुरली सुनेंगे बाबा की, तो इस बारे में भी जरूर सोचेंगे कि हम रोज बाबा पर क्या चढ़ाते हैं, कितनी बार बाबा को हम शुक्रिया करते हैं उस जीवन का जो बाबा ने हमें प्रदान किया है। तो चलिए सुनते हैं। आज है 6 फरवरी। मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया के कांटों को नई दुनिया के फूल बनाना, पुरानी दुनिया के कांटों को नई दुनिया के फूल बनाना, ये किसका काम है? किसका काम है? ये तुम होशियार मालियों का काम है। ये तुम होशियार मालियों का काम है। पुरानी दुनिया के कांटों को नई दुनिया के फूल बनाना, ये तुम होशियार मालियों का काम है। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सी श्रेष्ठ तकदीर बनाते हो? अपनी भी औरों की भी। संगम युग पर तुम बच्चे कौन सी श्रेष्ठ तकदीर बनाते हो? तो उत्तर है, कांटे से खुशबूदार फूल बनना, कांटे से खुशबूदार फूल बनना, ये है सबसे श्रेष्ठ तकदीर। सिर्फ फूल नहीं, खुशबूदार फूल, कांटे से खुशबूदार फूल बनना, ये है सबसे श्रेष्ठ तकदीर। अगर एक भी कोई विकार है, आलस्य भी है, अलबेलापन भी है, सुस्ती कहीं आती है, अगर एक भी कोई विकार है तो माना कांटा है। और तकदीर अच्छी कौन सी है? कांटे से खुशबूदार फूल बनना। अगर एक भी कोई विकार है तो कांटा है। जब कांटे से फूल बनो तब सतो प्रधान देवी देवता बनो। जब कांटे से फूल बनो माना संपूर्ण निर्विकारी, तब सतो प्रधान देवी देवता बनो। तुम बच्चे अभी 21 पीढ़ी के लिए अपनी सूर्यवंशी तकदीर बनाने आए हो, 21 पीढ़ी के लिए सूर्यवंशी तकदीर बनाने आए हो। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति, ओम शांति। गीत बच्चों ने सुना? सुना नहीं? गीत बच्चों ने सुना? सुना, ये तो कॉमन गीत है। क्योंकि तुम हो माली और बाप है बागवान, अब मालियों को कांटों से फूल बनाना है। ये अक्षर बहुत क्लियर है। भक्त आए हैं भगवान के पास, ये सब भक्तियां हैं ना। अब क्यों आए हैं बाप के पास? ज्ञान की पढ़ाई पढ़ने बाप के पास आए हैं। ज्ञान की पढ़ाई पढ़ने बाप के पास आए हैं। क्यों पढ़ते हैं ये पढ़ाई? इस राजयोग की पढ़ाई से ही नई दुनिया के मालिक बनते हो। तकदीर इसी से बनती है, यही पढ़ाई हमें विकारों से मुक्ति दिलाती है। इस राजयोग की पढ़ाई से ही नई दुनिया के मालिक बनते हो। तो भक्तियां कहती हैं, हम तकदीर बनाकर आए हैं, नई दुनिया दिल में सजा कर आए हैं। बाबा भी रोज कहते हैं कि स्वीट होम और स्वीट रजाई को याद करो। ये हमारे पढ़ाई का एक लेसन है, स्वीट होम और स्वीट रजाई को याद करो। और कौन याद करेगा? आत्मा को याद करना है, अपने को आत्मा समझकर स्वीट होम स्वीट रजाई को याद करो। हर एक सेंटर पर कांटों से फूल बन रहे हैं। फूलों में भी नंबरवार होते हैं ना, शिव के ऊपर फूल चढ़ाते हैं, कोई कैसा फूल चढ़ाते हैं, कोई कैसा चढ़ाते हैं। गुलाब के फूल और अक के फूल में रात दिन का फर्क है। तो ये भी बगीचा है, ये भी बगीचा है। कोई मोतिये के फूल हैं, कोई चंपा के हैं, कोई रतन ज्योत हैं, और कोई आगे क्या अक्के भी हैं, हैं? कौन है अक्के फूल? जरा हाथ तो खड़ा कीजिए। कोई भी नहीं है ना। लेकिन बाबा कहते हैं कोई कोई बाबा के बेहद के बगीचे में कोई कोई कैसे फूल हैं, कोई मोतिये के हैं, कोई चंपा के हैं, कोई रतन ज्योत हैं, कोई अक्के भी हैं। बच्चे जानते हैं इस समय सब हैं कांटे, कलयुग में इस समय सब हैं कांटे, ये दुनिया ही कांटों का जंगल है। और अब इनको बनाना है नई दुनिया के फूल। इस पुरानी दुनिया में हैं कांटे। तो गीत में भी कहते हैं कि हम बाप के पास आए हैं। अब दूसरा उत्तर क्यों आए हैं? हम बाप के पास आए हैं पुरानी दुनिया के कांटे से नई दुनिया का फूल बनने। ये जरूरी है ना याद रखना, हम क्यों आए हैं बाप के पास पुरानी दुनिया के कांटे से नई दुनिया का फूल बनने। किस बाप के पास? जो बाप नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। कांटे से फूल अर्थात देवी देवता बनना है। गीत का अर्थ कितना सहज है, हम आए हैं। और क्या उत्तर? हम आए हैं तकदीर जगाने नई दुनिया के लिए। हम आए हैं तकदीर जगाने नई दुनिया के लिए। नई दुनिया है सतयुग। किसी की सतो प्रधान तकदीर है, किसी की रजो और किसी की तमो है। अर्थात अब कलयुग के कंपैरिजन में नहीं, लेकिन संगम युग पर, तो संगम में कोई की सतो प्रधान तकदीर है, कोई की रजो है, कोई की तमो है। इसलिए उसका रिजल्ट क्या होता है? कोई सूर्यवंशी राजा बनते हैं, कोई प्रजा बनते हैं, और कोई प्रजा के भी नौकर चाकर बनते हैं, है ना? तो तकदीर का आधार है पढ़ाई। तो कोई सूर्यवंशी राजा बनते हैं, कोई प्रजा बनते हैं, और कोई प्रजा के भी नौकर चाकर बनते हैं। ये नई दुनिया की राजाई स्थापन हो रही है। स्कूल में तकदीर जगाने जाते हैं ना, यहां तो है नई दुनिया की बात, इस पुरानी दुनिया में क्या तकदीर बनाएंगे? तुम तो भविष्य नई दुनिया में देवता बनने की तकदीर बना रहे हो। कैसे देवता? जिन देवताओं को सभी नमन करते आए हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सब उनको नमन करते हैं। तो आप सोचिए तो सही, कितनी ऊंची तकदीर है, ऐसी कितनी ऊंची पढ़ाई है, जिनको दुनिया के जो हाईएस्ट अथॉरिटीज हैं वो सब नमन करते हैं। तो तुम भविष्य नई दुनिया में देवता बनने की तकदीर बना रहे हो, जिन देवताओं को सभी नमन करते आए हैं। तुम जानते हो, क्या जानते हैं? हम ही सो देवता पूज्य थे और फिर हम ही पुजारी बने हैं। तो 21 जन्मों का वर्षा बाप से मिलता है, जिसे 21 पीढ़ी कहा जाता है। पीढ़ी वृद्ध अवस्था तक को कहा जाता है। बाप 21 जन्म का नहीं, 21 पीढ़ी का वर्षा देते हैं, क्योंकि युवा अवस्था में या बचपन में बीच में अकाले मृत्यु वहां कभी होता नहीं है। जीवन के अंत तक, यानी बुढ़ापे पूरा करके 150 साल पूरे तक उसका सुख भोगते हैं, क्योंकि युवा अवस्था में व बचपन में बीच में अकाले मृत्यु कभी होता नहीं है, इसलिए उनको कहा जाता है अमर लोक। और ये है मृत्यु लोक, रावण राज्य। यहाँ हर एक में विकारों की प्रवेशता है, तो जिसमें कोई एक भी विकार है, अब हमको चेक करना है अपने आप को, कोई भी छोटा मोटा किसी का अंश वंश कुछ तो नहीं है, जिसमें कोई एक भी विकार है तो कांटे हुए ना, तो कांटे हुए ना। बाप समझेंगे कि माली रॉयल खुशबूदार फूल बनाना नहीं जानते हैं, तो इसलिए केवल मालियों को अपने लिए पुरुषार्थ नहीं करना है, पुरुषार्थ करवाने का भी पुरुषार्थ करना है। तो बाबा समझेंगे माली रॉयल खुशबूदार फूल बनाना नहीं जानते हैं, अगर माली अच्छा होगा तो अच्छे अच्छे फूल तैयार करेंगे। विजय माला में पिरोने के लायक फूल चाहिए। देवताओं के पास अच्छे अच्छे फूल ले जाते हैं ना। अब बाबा एग्जाम्पल देते हैं, समझो क्वीन एलिजाबेथ आती है तो उनको कौन सा फूल देंगे? हाँ, अगर अभी कलयुगी दुनिया की भी अगर वो भी आती है तो एकदम फर्स्ट क्लास फूलों की माला बनाकर ले जाएंगे, ऐसा है ना? लेकिन देखो यहाँ के मनुष्य तो तमोप्रधान है, शिव के मंदिर में जाते हैं, समझते हैं ये भगवान है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो देवता कहते हैं, शिव को भगवान कहते हैं, तो वो ऊंचे से ऊंचा हुआ ना, कहते भी हैं, लेकिन फिर अब शिव के लिए क्या कहते हैं? धतूरा खाता था, भांग पीता था। एक तरफ भगवान ऊंचे से ऊंचा, फिर कहते हैं धतूरा खाता था, भांग पीता था, कितनी ग्लानी करते हैं। फूल भी तो अक के ले जाते हैं। अब ऐसा परमपिता परमात्मा उनके पास ले क्या जाते हैं? तमो प्रधान कांटों के पास तो फर्स्ट क्लास फूल ले जाते हैं, और शिव के मंदिर में क्या ले जाते हैं? दूध भी देखो कैसा चढ़ाते हैं, 5% दूध और बाकी 95% पानी। अब भगवान के पास दूध कैसा चढ़ाना चाहिए, जानते कुछ भी नहीं। अब तुम अच्छी रीति जानते हो। सब सुन रहे हैं ना? जरा चेक कीजिए अपने आप को और अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी, देखिए कोई सो तो नहीं गया। आंखें तो खुली है ना सबकी। हाँ जी, किसकी आंखें बंद है वो हाथ खड़ा करेंगे अभी। कोई नहीं, सब खुले वाले बैठे हैं। अच्छा तो बाबा ने कौन सी बात कही अभी, कौन सी कही? हाँ जी हाथ खड़ा कीजिए जरा, कौन बोलेंगे? हाँ बताइए बताइए। हाँ वो लोग तो वो चढ़ाते हैं और हम कैसा चढ़ाते हैं? हम प्योर 100% दूध है ना, प्योर दूध चढ़ाते हैं, प्योर संकल्पों का दूध, हाँ प्योर न्यूज का दूध, प्योर प्योर हम वो दूध चढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं भगवान के पास दूध कैसा चढ़ाना चाहिए, जानते तो कुछ भी नहीं, अब तुम अच्छी रीति जानते हो क्या चढ़ाना चाहिए। हाँ शिवलिंग के ऊपर वो रखा होता है ना कलश, वो बूंद 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 गिरता है, तो वो क्या होता है, वो किसकी यादगार है? हमारे संकल्पों की। तो कौन सा संकल्प हम बाबा को चढ़ाते हैं, कंप्लेंट करते हैं अपनी या किसी और की, हुँ? या कोई और व्यर्थ का संकल्प आता है, या कोई ऐसी न्यूज ऐसी होती है, तो वो क्या चढ़ाना है? अब तुम अच्छी रीति जानते हो, परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार है। बाबा कहते तुम्हारे में भी नंबरवार है। अच्छा जो अच्छा जानते हैं, जो अच्छा जानते हैं उनको क्या रिजल्ट मिलती है? बहुत सुंदर पॉइंट है। जो अच्छा जानते हैं उनको सेंटर का हेड बनाया जाता है। अच्छा अब क्या सब सेंटर्स के हेड्स एक से होते हैं? फिर वो भी तो नंबरवार होता है। लेकिन फिर भी जो अच्छा जानते हैं उनको सेंटर का हेड बनाया जाता है। सब तो एक जैसे नहीं होते हैं, ये बात भी बहुत जरूरी है समझना ना। सब तो एक से नहीं होते, तो प्रश्न ये कि मैं किसको देखूं, इसको देखूं उसको देखूं, कांटे को देखूं आग को देखूं, जो इतना होशियार नहीं है उसको देखूं होशियार को देखूं, किसको देखूं, किसको फॉलो करूं? पापा कहते किसी को भी नहीं देखो, मेरे को देखो, मेरे को देखो, फॉलो फादर। दादी जान की बहुत बार बार रिपीट करती थी, सी फादर फॉलो फादर, किसी को नहीं देखो। क्योंकि जो आज बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहा है, क्या मालूम कल को माया आ जाएगी और हम उसको ही देखते रह जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते किसी को भी नहीं देखो, मेरे को ही देखो बस, और मेरे को ही फॉलो करो। तो तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, जो अच्छा जानते हैं उनको सेंटर का हेड बनाया जाता है। सब तो एक जैसे नहीं होते, भले पढ़ाई एक ही है, मनुष्य से देवता बनने की ही एम ऑब्जेक्ट है, परंतु टीचर्स भी तो नंबरवार है ना। सब तो एक से नहीं होते, टीचर्स भी तो नंबरवार है ना। तो फिर एसेंस क्या है? विजय माला में आने का मुख्य आधार है पढ़ाई। तो बाबा को देखो और पढ़ाई को देखो, विजय माला में आने का मुख्य आधार है पढ़ाई। पढ़ाई तो एक ही होती है, उसमें पास नंबरवार होते हैं ना, तो सारा मदार पढ़ाई पर है। इसलिए कोई तो विजय माला के 8 दानों में आते हैं, कोई 108 में आते हैं, कोई 16,108 में आते हैं और आगे आगे सिजरा बनाते हैं ना। जैसे झाड़ का भी सिजरा निकलता है, पहले पहले एक पत्ता, फिर दो पत्ते, फिर बढ़ते जाते हैं, तो ये भी झाड़ है, बिरादरी होती है ना, जैसे कृपलानी बिरादरी आदि आदि। लेकिन वो सब है हद की बिरादरियां, ये है बेहद की बिरादरी। इस बेहद की बिरादरी में पहला पहला कौन है, इसमें पहला पहला कौन है, फाउंडेशन कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा। इसलिए उनको कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। तो शिव बाबा को देखो और ब्रह्मा बाबा को देखो, उनको कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, परंतु ये किसी को पता नहीं है। मनुष्य मात्र जरा भी नहीं जानते कि सृष्टि का रचयिता कौन है। बिल्कुल अहिल्या जैसे पत्थर बुद्धि हैं। ऐसे जब बन जाते हैं तब ही बाप आते हैं। अच्छा, अब फिर चौथी बात, तुम यहां आए हो, क्यों आए हो? पहली तीन बातें रिपीट कीजिए। कौन सी तीन बातें थी? हम यहां क्यों आए हैं? हाँ जी, हाथ खड़ा कीजिए। हम यहां क्यों आए हैं? हाँ हाँ, खड़े होके बताएंगे जरा जोर से, सुनाई नहीं दे रहा हमको जी। क्या करने? तकदीर बनाने आए हैं, वेरी गुड। दूसरा? और कांटे से फूल बनने आए हैं। और तीसरा? तीसरा कौन? वो तो अभी नहीं, पहले अभी तो हुआ ही नहीं वो पॉइंट। हाँ, पढ़ाई पढ़ने आए हैं, ज्ञान की पढ़ाई पढ़ने। तो तीन पॉइंट्स हो गए ना, ज्ञान की पढ़ाई पढ़ने, कांटे से फूल बनने और तकदीर जगाने नई दुनिया के लिए। ओके, अब ये तीन बातें। अब चौथी बात, तुम यहां आए हो अहिल्या बुद्धि से पारस बुद्धि बनने। अभी परसों तरसों भी बाबा ने कहा, बाबा आपको स्वच्छ बुद्धि देते हैं, और स्वच्छ बुद्धि बनती है याद से। बुद्धि स्वच्छ होगी ना, पारस बुद्धि, तो वो मन और संस्कार को कंट्रोल कर लेगी। और बुद्धि स्वच्छ नहीं होगी, अहिल्या बुद्धि होगी, तो मन और संस्कार हावी हो जाएंगे हमारे ऊपर। तो इसलिए बाबा कहते हैं, तुम यहां क्यों आए हो अहिल्या बुद्धि से पारस बुद्धि बनने। तो उसके लिए क्या क्या करना है, उसका मेथड क्या है, वो नोट कीजिए। नंबर वन, नॉलेज, नॉलेज धारण करनी चाहिए ना, सिर्फ सुनना नहीं है, नॉलेज भी धारण करनी चाहिए ना। नंबर टू, बाप को पहचानना चाहिए, बाप को पहचानना चाहिए। और तीसरा, पढ़ाई का ख्याल करना चाहिए, अटेंशन पढ़ाई पर, पढ़ाई का ख्याल करना चाहिए, तो अहिल्या बुद्धि से पारस बुद्धि बनेंगे। बाप लालच भी धारण करनी चाहिए, बाप को पहचानना चाहिए और पढ़ाई का ख्याल करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? समझो, आज आए हैं, कल अचानक शरीर छूट जाता है, फिर क्या पद पा सकेंगे, है ना? पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, बाबा को पहचाना नहीं, धारण कुछ नहीं किया और शरीर छूट गया, तो फिर क्या पद पा सकेंगे? नॉलेज तो कुछ भी उठा ही नहीं, कुछ भी सीखे नहीं, तो क्या पद पाएंगे? दिन प्रतिदिन जो देरी से शरीर छोड़ते हैं, देरी से माना संगम युग काफी बीत गया उसके बाद फिर शरीर छोड़ते हैं और फिर वो जन्म लेंगे, उनको टाइम तो थोड़ा मिलता है जब तक बड़े हो, क्योंकि टाइम तो कम होता जाता है, उसमें जन्म ले लें तो क्या कर सकेंगे? अभी तो संगम युग लगभग पूरा ही होने वाला है, इसलिए बाबा कहते हैं शरीर का ख्याल रखो लेकिन इससे अटैचमेंट मत रखो। तो नया जन्म लेके क्या कर सकेंगे? हाँ, तुम्हारे से जो जाएंगे ये बात तो है, तो कोई अच्छे घर में जन्म लेंगे, संस्कार ले जाते हैं, तो वे आत्मा झट जाग जाएगी। तो संस्कार तो यहां बनाने पड़ेंगे ना, तो बचपन में भी जाग जाएंगे। संस्कार ले जाते हैं तो वे आत्मा झट जाग जाएगी, शिव बाबा को याद करने लगेगी। अगर संस्कार ही नहीं पड़े हुए होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इन बातों को बहुत महीनता से समझना होता है, इन बातों को बहुत महीनता से समझना होता है। माली अच्छे अच्छे फूलों को ले आते हैं तो उनकी महिमा भी गाई जाती है। फूल बनाना तो माली का काम है ना। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको बाप को याद करना आता ही नहीं है, तो बाबा कहते हैं माली का काम है उनको सिखाना। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको बाप को याद करना आता ही नहीं है, तकदीर के भी ऊपर है ना। तकदीर में नहीं है तो कुछ भी समझते नहीं। तकदीरवान बच्चे तो, अब तकदीरवान बच्चों की डेफिनेशन, तकदीरवान बच्चे तो बाप को यथार्थ रीति पहचान कर उन्हें पूरी रीति याद करेंगे, ठीक है ना। तो अहिल्या बुद्धि से पारस बुद्धि बनने में एक पॉइंट क्या था, बाप को पहचानना चाहिए। तो जिसकी पारस बुद्धि है वही तो तकदीरवान है। तो बाबा क्या कहते हैं, तकदीरवान बच्चे तो बाप को यथार्थ रीति पहचान कर उन्हें पूरी रीति याद करेंगे, बाप के साथ साथ नई दुनिया को भी याद करते रहेंगे। गीत में भी कहते हैं ना, हम नई दुनिया के लिए नई तकदीर बनाने के लिए आए हैं। तो 21 जन्म के लिए बाप से राज्य भाग्य लेना है। इस नशे और खुशी में रहें तो ऐसे ऐसे गीतों का अर्थ इशारे से समझ जाएं। लेकिन स्कूल में भी किसी की तकदीर में नहीं होता है तो फेल हो पड़ते हैं, पढ़ते ही नहीं ठीक से। और ये तो बहुत बड़ा इम्तहान है, खुद भगवान बैठ पढ़ाते हैं तो कितना अटेंशन होना चाहिए। ये खुद भगवान बैठ पढ़ाते हैं। ये नॉलेज सभी धर्म वालों के लिए है। कौन सी नॉलेज? ये नॉलेज। कौन सी नॉलेज? ये नॉलेज सभी धर्म वालों के लिए है। अब त्रिमूर्ति का ज्ञान तो सभी लोग नहीं समझेंगे, है ना। सभी धर्म वालों के लिए कौन सी नॉलेज है, सुनिए। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। ये नॉलेज सब धर्म वालों के लिए है। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। तुम जानते हो, किसी भी देहधारी मनुष्य को भगवान कह नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कहेंगे, वह भी सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं। यहाँ है मनुष्य, यहाँ देवताएं नहीं है। ये है मनुष्य लोक, ये लक्ष्मी नारायण आदि दैवी गुण वाले मनुष्य हैं, जिसको डीटिज्म कहा जाता है। सतयुग में सभी देवी देवताएं हैं, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। गाते भी हैं, ब्रह्मा देवताएं नमः, विष्णु देवताएं नमः, हाँ शंकर देवताएं नमः, और फिर कहेंगे शिव परमात्माएं नमः। शिव को देवता नहीं कहेंगे और मनुष्य को फिर भगवान नहीं कह सकते। तो तीन फ्लोर्स है ना, हाँ तीन फ्लोर्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट फ्लोर कौन सा है? फर्स्ट फ्लोर कौन सा है? परमधाम है या यहाँ फर्स्ट फ्लोर है? फर्स्ट फ्लोर नीचे से शुरू होता है कि ऊपर से? अभी हम लिफ्ट में आए ना तो ये सेकंड फ्लोर लिखा हुआ था। तो फिर फर्स्ट फ्लोर कहाँ से शुरू होता है? नीचे से होता है ना। तो फिर इन तीन लोगों में फर्स्ट फ्लोर कौन सा है? कौन सा है? कौन सा? हाँ उल्टा, झाड़ उल्टा है, है ना। तो परमधाम फर्स्ट फ्लोर है, हमारी यात्रा वहां से शुरू होती है, ठीक है ना। तो परमधाम फर्स्ट फ्लोर, सूक्ष्म वतन सेकंड फ्लोर, और फिर ये है थर्ड फ्लोर। तो बाबा कहते तीन फ्लोर्स है ना, हम हैं, हम माना हम बाबा नहीं, हम हैं थर्ड फ्लोर पर। सतयुग के जो दैवी गुण वाले मनुष्य हैं, वही फिर आसुरी गुण वाले बन जाते हैं। माया का ग्रहण लगने से काले हो जाते हैं। जैसे चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है ना, तो वो है हद की बातें और ये है बेहद की बात। बेहद का दिन और बेहद की रात है। गाते भी हैं, ब्रह्मा का दिन और रात। तुमको अभी एक बाप से ही पढ़ना है, बाकी सब कुछ भूल जाना है। बाप द्वारा पढ़ने से तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। ये सच्ची सच्ची गीता पाठशाला है। पाठशाला में हमेशा नहीं रहते, पढ़ के घर चले जाते हैं। पाठशाला में हमेशा नहीं रहते, मनुष्य समझते हैं भक्ति मार्ग भगवान से मिलने का मार्ग है। जितना बहुत भक्ति करेंगे भगवान राजी होगा, आकर फल देगा। लेकिन ये सब बातें तुम ही अब समझते हो। भगवान कैसे आता है, कैसे फल देता है, ये सब बातें तुम ही अब समझते हो। भगवान एक है जो अभी फल दे रहे हैं। फल क्या है? फल क्या है भक्ति का? ज्ञान। हाँ, तो ज्ञान ले रहे हैं ना हम। तो अगर मुरली का पॉइंट मिस हो गया तो माना फल एक मिस हो गया। भगवान एक है जो फल अभी दे रहे हैं। जो पहले पहले सूर्यवंशी पूज्य थे उन्होंने ही सबसे जास्ती भक्ति की है, वही यहाँ आएंगे। तुमने ही पहले पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति की है तो जरूर तुम ही पहले पहले भक्त ठहरे। तो पहले फल भी मिलते हैं, फिर गिरते गिरते तमो प्रधान बन जाते हो। आधा कल्प तुमने भक्ति की है इसलिए तुमको ही पहले ज्ञान देते हैं। ज्ञान फल तुमको ही पहले ज्ञान देते हैं, परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। अच्छा, अब इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो सुनिए जरा ध्यान से। तुम्हारा इस पढ़ाई में ये बहाना नहीं चल सकता। कौन सा बहाना? कौन सा बहाना नहीं चल सकता? और कौन सा बहाना चल सकता है? कौन सा? कोई सा चल भी सकता है? कोई सा भी बहाना नहीं चल सकता। तो आज बाबा ने एक ही बहाने की बात की है, बाकी बहाने तो बहुत सारे होते हैं। लेकिन चलेगा तो कोई भी नहीं, परंतु आज का कौन सा बहाना है? तुम्हारी इस पढ़ाई में ये बहाना चल नहीं सकता कि हम दूर रहते हैं, इसलिए रोज नहीं पढ़ सकते हैं। कोई कहते हैं हम 10 माइल दूर रहते हैं। अब बाबा ने 4 कारण बताए हैं ये वाला बहाना क्यों नहीं चल सकता। वो 4 कारण नोट कीजिए, है ना? दूर हम रहते हैं तो इसलिए रोज नहीं आ सकते। कोई कहते हैं हम 10 माइल दूर रहते हैं। अरे, बाबा की याद में तुम 10 माइल भी पैदल करके जाओ तो कभी थकावट नहीं होगी। इसलिए ट्रांसपोर्ट का भी बहाना नहीं है ना। ट्रांसपोर्ट ही नहीं था तो मैं कैसे आऊं। अरे, बाबा की याद में तुम 10 माइल भी पैदल करके जाओ तो कभी थकावट नहीं होगी। कितना बड़ा खजाना लेने जाते हो। तीर्थों पर मनुष्य दर्शन करने के लिए पैदल जाते हैं, कितना धक्का खाते हैं। और ये तो एक ही शहर की बात है, एक ही शहर में आना है। बाप कहते हैं मैं इतना दूर से आया हूँ, और तुम कहते हो घर 5 माइल दूर है। वाह, खजाना लेने के लिए तो दौड़ते आना चाहिए, खजाना लेने के लिए तो दौड़ते आना चाहिए। अच्छा, फिर अमरनाथ पर तो सिर्फ दर्शन करने के लिए कहां कहां दूर दूर से जाते हैं, और यहां तो बहुत सुंदर बात है। अमरनाथ पर दर्शन, कितना ऊंचा है ना अमरनाथ। हम तो गए नहीं वहां इस जन्म में, पिछले जन्मों में गए होंगे। तो अमरनाथ पर सिर्फ दर्शन करने के लिए कहां कहां से जाते हैं, और यहां तो अमरनाथ बाबा स्वयं पढ़ाने आए हैं, है ना? यहां तो अमरनाथ बाबा स्वयं पढ़ाने आए हैं, तो दौड़ दौड़ के आना चाहिए। अच्छा, फिर और आए क्यों हैं? सो भी तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं, विश्व का मालिक बनाने आए हैं। और तुम बहाना करते रहते हो, और तुम बहाना करते रहते हो। सवेरे अमृत विले तो कोई भी आ सकते हैं, उस समय तो कोई डर नहीं है, कोई तुमको लूटेंगे भी नहीं, है ही तो क्या लूटने का हमारे पास, क्या लूटेंगे, मोबाइल लेके मत आओ, मोबाइल कोई से लूट लेगा। तो बाबा कहते हैं अगर कोई चीज जेवर आदि होंगे तो छीनेंगे। चोरों को चाहिए ही क्या, धन और पदार्थ, परंतु किसी की तकदीर में नहीं है तो फिर बहाने बहुत बनाते हैं, तो ये भी तकदीर की बात है। बाबा कहते हैं बहानेबाजी छोड़ो, किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर बहाने बहुत बनाते हैं, पढ़ते नहीं तो अपना पद गंवाते हैं। बाप आते भी भारत में है, भारत को ही स्वर्ग बनाते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं, परंतु कोई पुरुषार्थ भी करे ना, अगर कदम ही नहीं उठाएंगे तो पहुंच कैसे सकेंगे, कदम ही नहीं उठाएंगे तो पहुंच कैसे सकेंगे। तुम बच्चे समझते हो कि ये है आत्माओं और परमात्मा का मेला, बाप के पास आए हैं, बाप के पास आए हैं, फिर से बाबा कहते हैं स्वर्ग का वर्षा लेने, नई दुनिया की स्थापना हो रही है, स्थापना पूरी हुई और विनाश शुरू हो जाएगा। ये वही महाभारत की लड़ाई है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है, अभी नोट तो सबने किया होगा ना धारणा की बातें, लेकिन हम पढ़ लेते हैं। बाप जो ज्ञान का खजाना दे रहे हैं उसको लेने के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स, क्या करना है उसको, मुरली पढ़ के नहीं, हाँ, बाप जो ज्ञान का खजाना दे रहे हैं उसको लेने के लिए कैसे दौड़ दौड़ कराना है, दौड़ दौड़ कराना है, मतलब कि लेट भी नहीं होना चाहिए, है ना, उसको लेने के लिए दौड़ दौड़ कर आना है। इसमें किसी भी प्रकार का बहाना नहीं देना है, इसमें किसी भी प्रकार का बहाना नहीं देना है। बाप की याद में 10 माइल भी पैदल चलने से थकावट नहीं होगी, बाप की याद में 10 माइल भी पैदल चलने से थकावट नहीं होगी। दूसरा पॉइंट है, विजय माला में आने का आधार क्या है, पढ़ाई है, विजय माला में आने का आधार पढ़ाई है, इसलिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। ये भी पढ़ाई का ही सब्जेक्ट है ना, सेवा, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। और तीसरा सब्जेक्ट क्या है, स्वीट होम और स्वीट राजाई को याद करना है, स्वीट होम और स्वीट राजाई को याद करना है। वरदान, संगम युग के महत्व को जान, संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। अब इसका एक्सप्लेनेशन है, संगम युग पर बाप दादा का वायदा है, एक दो लाख लो। अब क्या दें और क्या लें, इस पर विचार सागर मंथन कीजिए। संगम युग पर बाप दादा का वायदा है, एक दो और लाख लो। जैसे ये संगम का सर्वश्रेष्ठ समय है, सर्वश्रेष्ठ जन्म है, सर्वश्रेष्ठ टाइटल्स इस समय के हैं, वैसे ही सर्व प्राप्तियों का अनुभव भी अभी ही होता है। सर्व प्राप्तियों का अनुभव भी अभी ही होता है। अभी एक का सिर्फ लाख गुना नहीं मिलता, लेकिन जब चाहो, जैसे चाहो, जो चाहो, बाप सर्वेंट रूप में बांधे हुए हैं। जब चाहो, जैसे चाहो, जो चाहो, बाप सर्वेंट रूप में बांधे हुए हैं। एक का अनगिनत बार रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि वर्तमान समय वरदाता ही आपका है, क्योंकि वर्तमान समय वरदाता ही आपका है। जब बीज आपके हाथ में है तो बीज द्वारा जो चाहो वह सेकंड में लेकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकते हो। तो अभी इसके बाद स्लोगन और अव्यक्त इशारा पढ़ने के पहले इस बात के कनेक्शन में छोटी सी बात सुना दूं। कईयों को पता होगा, आपको मालूम है कि मधुबन के बाद विश्व का पहला केंद्र कमला नगर सेंटर दिल्ली में खुला था 1952 में, है ना। तो वहां पर जो माताएं आती थी, उनके पास तो कोई अपना इतने पैसे वगैरह नहीं होते थे, कोई दो गाजर ले आया, कोई एक कटोरी चावल ले आया, कोई एक कटोरी चीनी ले आया, कोई दो आलू ले आया, जो सब्जी घर के लिए खरीदते थे उसमें से थोड़ा थोड़ा बचाकर लेके आते थे। कभी किसी के पास एक रुपया हुआ तो वो कर दिया। तो मुझे याद है एक बार बाबा वहां के माताओं के ग्रुप से मिल रहे थे, अव्यक्त बाप दादा, और ये कब की बात होगी, 90s की बात होगी, 90s के बाद में, उस समय की। तो बाबा ने, हाँ नहीं उसके भी बाद, शांतिवन की बात है ये, डायमंड हॉल में मिल रहे थे। तो बाबा ने तब कहा था कि ये जो सेंटर है ये सदा फलीभूत रहेगा, क्योंकि यहाँ की माताओं ने उस समय पर सहयोग दिया है जब यज्ञ को सबसे ज्यादा जरूरत थी, और उस समय का एक रुपया आज के एक लाख रुपए से भी बहुत ज्यादा है। तो ये बात है कि अगर हम समय पर सहयोग देते हैं बाबा के कार्य में, एक दो केवल लाख नहीं, अनगिनत बार, अनगिनत बार उसका रिटर्न हमको मिल जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं एवर रेडी रहो, एवर रेडी। ओके, स्लोगन, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति, अब परिस्थिति अच्छी भी होती है, अच्छी नहीं भी होती है, पर कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी न जाए। खराब परिस्थिति चली गई फिर तो चलो खुशी रहेगी, लेकिन कभी कभी अच्छी वाली भी चली जाती है ना। अब हमारे साथ दादी प्रकाशमणि थी, वो चली गई, हाँ दादी जानकी थी, तो बाबा थे, मम्मा थी। तो लेकिन बाबा कहते हैं परिस्थिति चली जाए परंतु खुशी ना जाए, खुशी ना जाए। अव्यक्त इशारा, एकता और एकाग्रता, ये दोनों श्रेष्ठ भुजाएं हैं। किसकी? किसकी? एकता और एकाग्रता, ये दोनों श्रेष्ठ भुजाएं हैं कार्य करने के सफलता की। मतलब हम दोनों, हम सबके पास ये दो भुजाएं होनी चाहिए, एकता और एकाग्रता। तो ये सफलता का मेथड है। एकाग्रता मना व्यर्थ संकल्पों और विकल्पों से सदा मुक्त। बाबा की भाषा है, एकाग्रता अर्थात सदा निर्व्यर्थ संकल्प और निर्विकल्प, माना न व्यर्थ संकल्प हो न विकल्प हो, यह है एकाग्रता। तो जहां एकता और एकाग्रता है वहां सफलता गले का हार है। वरदाता को एक 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 शब्द प्यारा है, एक शब्द, वो एक है ना, उसको एक ही प्यारा है। इसलिए बाबा कौन से शब्द यूज करते हैं? एक व्रता, एक बल, एक भरोसा, और क्या, एक मत, है ना, न मन मत न पर मत, एक रस। एक शब्द बाबा को बहुत प्रिय है, एक व्रता, एक बल, एक भरोसा, एक मत, एक रस। किसी व्यक्ति किसी वैभव का रस नहीं, ऐसे ही बाबा को पसंद है एकता, एकता और एकाग्रता। तो सारे एक 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 है ना, उसको हमको धारण करना है। ओम शांति,
ओम शांति। आज हमारे बीच में सुधा बहन, जो कि रशिया से आई हैं तो दिल्ली की, लेकिन रशिया कॉन्टिनेंट में आपको सेवा करने का बहुत सुंदर मौका है। और रशिया में तो सेवा बहुत विस्तार से चल ही रही है, और रशियन भाई बहने यहाँ पर आते ही रहते हैं, बहुत ही बाबा के लाडले और प्यारे हैं, और अनेक प्रकार की सेवाएं चलती हैं। अभी कुछ ही दिन पहले भुवनेश्वर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था प्रवासी भारतवासियों के लिए, जिन्होंने, वह भारतवासी टॉप लेवल के, जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर किसी न किसी फील्ड के अंदर विशेष कार्य किए हैं, तो उसमें सुधा बहन को भी राष्ट्रपति जी के द्वारा विशेष सम्मान किया गया, खास करके स्पिरिचुअल एजुकेशन के फील्ड के लिए। आप ताली तो बजाएं। और बहुत बड़ी सेवा हुई, प्राइम मिनिस्टर से भी मिले, और पूरे विश्व से जो इंटरनेशनल लोग आए हुए थे उसमें बाबा का संदेश देने का बहुत सुंदर मौका मिला है। तो हमारे बीच में है, और आपको जैसे पहले बताया था कि एनसीसी मीटिंग होने वाली है, जिसके लिए पूरे विश्व के हमारी सीनियर बहनें और भाई और नेशनल कोऑर्डिनेटर, सेंट्रल कोऑर्डिनेटर सभी एक दो दिन में पहुंच रहे हैं, और आरसीस भी पहुंच चुके हैं, उनकी मीटिंग चल रही है, और फिर उसके बाद एनसीसी की मीटिंग होने वाली है। फिर हम इन बहनों से बार बार मिलते ही रहेंगे, और इनके पास तो ज्ञान का अथाह खजाना है। और अभी मैं डबल विदेशी भोग से पहले डबल विदेशी भाई बहनों का प्रोग्राम बता देती हूँ। ऑल द डबल फॉरेन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, रेज योर हैंड। ओके, आई अनाउंस टुडेज प्रोग्राम फॉर डबल फॉरेन।